ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के पहले वार्षिकोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। वैश्विक मान्यताओं को आत्मसात करते हुए नागरिकों को सूचित करने के कार्य में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के सफल होने का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का विश्वास। शिक्षक, प्राध्यापक और कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होने पर कार्रवाई करने की शिक्षा मंत्री महावीर पून की चेतावनी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम सार्वजनिक। और फिलीपींस में समुद्री तूफान फुंगवोंग से बचने के लिए लगभग 10 लाख लोगों को किया गया स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल ने आज स्थापना का पहला वर्षगांठ मनाया है। रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को समायोजित कर रूपांतरित पीएसबी नेपाल ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर अपनी स्थापना का पहला वार्षिकोत्सव मनाया। समारोह का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन से अपनी विरासत को जिम्मेदारी से संभालते हुए सार्वजनिक सेवा प्रसारण के उद्देश्य अनुरूप प्रतिबद्ध होकर नागरिकों को सुसूचित करने का आग्रह किया। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि पीएसबी की प्रस्तुति महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसे अपनी प्रस्तुति और पहुंच को प्रभावी ढंग से ऊपर उठाते रहना होगा। कार्यक्रम में पीएसबी नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि लोकतंत्र का प्रवर्तन और नागरिकों की आवाज संस्था की पहली प्राथमिकता है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महावीर पून ने नेपाल शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक और शिक्षा निकाय के कर्मचारी संघ संगठनों को गैर राजनीतिक चरित्र का बनाने का आह्वान किया है। मंत्री पून ने आज बयान जारी कर बताया कि साझा प्रकृति वाला ट्रेड यूनियन होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के जन संगठनों और स्वेच्छुक संस्थाओं में मौजूद शिक्षक, प्राध्यापकों के संगठनों को वे मान्यता नहीं देंगे। साथ ही शिक्षकों, प्राध्यापकों की आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता पाए जाने पर कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम सार्वजनिक कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार पूरक परीक्षा में 73.41% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले महीने आश्विन 7 और 8 गते हुई परीक्षा में 1,04,026 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 76,367 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 4 विद्यार्थियों के परिणाम रद्द कर दिए गए हैं। ये जानकारी बोर्ड ने दी। पिछले श्रावण में जारी किए गए नियमित परीक्षा के परिणाम में 61.17% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के समक्ष चिकित्सा शिक्षा सुधार की मांग रखते हुए डॉ गोविंद केसी ने 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री कार्की से आज सिंह दरबार में मिलकर डॉ केसी ने ज्ञापन पत्र सौंपा। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस संयोजक राम बहादुर रावल ने दी। ज्ञापन पत्र में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार जनशक्ति के पदों में वृद्धि करने तथा चिकित्सकों सहित सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की मांग शामिल है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की 2 दिवसीय विस्तारित बैठक कल रात सौराहा में संपन्न हुई। बैठक ने आगामी फाल्गुन 21 गते के लिए घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने की तैयारी के लिए सभी दलों और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय किया है। चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए बैठक ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान भी किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल से नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की है। गृह मंत्रालय में आज हुई इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान मंत्री अर्याल और राजदूत श्रीवास्तव के बीच चुनावों के लिए शांति सुरक्षा के विषय पर बातचीत हुई। ये जानकारी गृहमंत्री के सचिवालय ने दी। इस अवसर पर गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि देश इस समय एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि शांति सुरक्षा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा प्रवाह सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है तथा घोषित चुनावों को निर्धारित तिथि पर ही भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है। इस अवसर पर भारतीय राजदूत श्रीवास्तव ने आगामी फाल्गुन 21 में होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनावों के भयमुक्त माहौल में प्रभावी रूप से संपन्न होने पर विश्वास व्यक्त किया। काठमांडू महानगर पालिका के वातावरण व्यवस्थापन विभाग ने खुले स्थानों में प्लास्टिक उत्पाद और कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति जलाने पर प्रति व्यक्ति 10,000 रूपये का जुर्माने का प्रावधान है। सर्दी बढ़ने के साथ ही कचरा, प्लास्टिक और अन्य वस्तुएं खुले स्थानों पर जलाने की घटनाएं बढ़ गई है। ये बताते हुए ऐसी वस्तुओं को जलाने पर रोक लगाई गई है। विभाग की प्रमुख सरिता राय के अनुसार जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल भाव को कम करने के लिए इस प्रकार का निर्णय किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस में आए शक्तिशाली समुद्री तूफान फुंगवोंग के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही, जिसके कारण भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिनमें से अधिकांश को विभिन्न राज्यों में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रखा गया। इन शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि तूफान के कारण अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग लापता है। बचाव कार्यों में लगी टीमों द्वारा अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के पहले वार्षिक उत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। वैश्विक मान्यताओं को आत्मसात करते हुए नागरिकों को सूचित करने के कार्य में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के सफल होने का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का विश्वास। शिक्षक, प्राध्यापक और कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होने पर कार्रवाई करने की शिक्षा मंत्री महावीर पून की चेतावनी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम सार्वजनिक। और फिलीपींस में समुद्री तूफान फुंगवोंग से बचने के लिए लगभग 10 लाख लोगों को किया गया स्थानांतरित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।